कहीं है मानो कितने में कल से चर्चा प्रारंभ हुई है काय सर्ग के ऊपर और शब्द से ऐसा लगता है कि काय का उत्सर्ग अर्थात त्याग करना और कल ये विचार किया था कि दो प्रकार की कर्म निवृत्ति होती है, एक तो यत्न साध्य और दूसरी होती है अयत्न साध्य। तो ये शरीर की निवृत्ति है, अयत्न साध्य है, शरीर की निवृत्ति संभव नहीं है। तो यहाँ शरीर से ममत्व निवृत्ति को कायोत्सर्ग कहा, शरीर से ममत्व की निवृत्ति को कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ ये है कि शरीर से ममत्व की निवृत्ति, बराबर कल ही चर्चा करने और ये विचार किया था कि भगवती आराधना राजवार्षिक के अनुसार राजवार्षिक काल में काल का एक पॉइंट इसने डाल दिया, परिमित काल विषय सीमित समय के लिए, सीमित समय के लिए आज दो चार बिंदुओं पर विचार करना है। पहले ये कि कायोत्सर्ग का प्रयोजन क्या है, कितने समय तक हो सकता है और कायोत्सर्ग के भेद कितने, इन बातों पर अपन विचार करेंगे। कायोत्सर्ग कब कब किया जाता है ये चौथा बिंदु रहेगा और कायोत्सर्ग के कौन कौन से दोष है, बराबर कायोत्सर्ग के प्रयोजन, कायोत्सर्ग के भेद, कायोत्सर्ग का समय और कायोत्सर्ग का प्रयोजन, इनमें से कितना हो पाएगा ये अलग विषय है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि शक्तियों की तरह ये विषय नहीं रहना चाहिए। नवीन भाई कोशिश करेंगे। मूल बात कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है, कायोत्सर्ग क्रिया सही भाषा डेफिनेशन नहीं, मतलब क्या है कायोत्सर्ग का, कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या, क्यों पूजन हो जाती है उसके बाद कायोत्सर्ग करो और गुणवाणी का अध्ययन हो जाता है उसके बाद आता है कायोत्सर्ग करो, तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या इसके लिए थोड़ा सा और विचार करते हैं, फिर उसके बाद में कायोत्सर्ग के प्रयोजन के लिए अपन विचार करेंगे। धौला के इसका बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप बताया कि कायोत्सर्ग का मतलब क्या, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं, निसन्नस्य निवन्नस्य वा काहुस्य तथा यही सह देह परिचागो काउर सद्गो नाम। अर्थ पहले में चित बैठे हुए, चित करके खड़े हुए या बैठे हुए या विरक्त साधु का तीन बातें भी, बैठा हुआ हो, खड़ा हो या विरक्त हो। तुम्हें भाई मिथ्या दृष्टि से काय कर्म होता है कि नहीं है, चर्चा करेंगे। निश्चय से तो नहीं होता, निश्चय का ही जवाब चाहिए कि निश्चय से तो नहीं होता है। तीव्र कषाय से यदि उसको मंद कषाय में आना है तो मंद कषाय के दृष्टि से, लेकिन चर्चा बाद में करते हैं उसकी। ठीक है, बैठे हुए या विरक्त, बात समझ में आ गई? तीनों में विरक्त का अर्थ नहीं है कि संसार शरीर भोगों से जो विरक्त हुआ। हाँ, इसमें दिया कि निसन्नत्व निविन्नत्व हुआ, ऐसा दिया नहीं? तो इसको नियत तो ऐसा किया है जो वहाँ लिखा हुआ, अर्थ ऐसा समझना कि जो बैठा हुआ है वो भी विरक्त होना चाहिए और जो खड़ा है वो भी विरक्त होना चाहिए, क्योंकि रागी से कार्योत्सर्ग संभव ही नहीं। ये जो रागी है इसके भी चर्चा अपन बाद में करेंगे कि सम्यक दृष्टि से भी कार्योत्सर्ग होता है कि नहीं होता है, करता है कि नहीं करता है, तो उसकी भी चर्चा। श्रद्धा अपेक्षा से तो वो सदाकाल कार्योत्सर्ग है, फिर भी उसके कार्योत्सर्ग होता है। ये दौरान लिखा है कि बैठे हुए या स्थित जो विरक्त साधु हैं उनके, अब अगली बात बहुत अच्छी लगी है, कषाय एक ही सह कषायों के साथ देह परित्यागो, देह के ममत्व का मन से समझना है, पर ममत्व का क्या, किसके साथ ममत्व का क्या? ममत्व भी अपने आप में कषाय है, ममत्व भी अपने आप में कषाय है, लेकिन रत्नकरण प्रावधाचार्य ने जैसे उपवास की परिभाषा बताई, उपवास की परिभाषा बताई क्या है कि विषय कषाया हारो त्यागो यत्र विधीयते तो उपवासो विग्रह शेषम लंघनकम विदु। विषय कषाय इन दो के साथ यदि आहार का त्याग होता है, यदि विषय कषाय के साथ आहार का त्याग किया जाता है तब तो उपवास है, और सिर्फ आहार का त्याग कर दिया विषय कैसा उतनी हो या उससे ज्यादा भी हो जाए तो वो तो उपवास नहीं माना जाता। ऐसे यहाँ पर कि कषायों के साथ विरक्ति के साथ साथ कषायों का त्याग, विरक्ति होती है तो कषायों का त्याग है, ऐसे देह का जो त्याग है इसको कायोत्सर्ग कहते हैं। आगे वहाँ धौला में लिखा है, हालांकि इतना समय आज नहीं है इसका विशेष डिटेल करने के लिए, सामान्य बताते हैं यहाँ पर कि नेदम ज्ञान संतो निवदति, इसका ज्ञान में अंतर्भाव नहीं होता। ये वैसे बात को चिंतनीय बात है कि कायोत्सर्ग का ध्यान में अंतर्भाव नहीं होता, मतलब ध्यान भिन्न है और कायोत्सर्ग भिन्न है। तो कायोत्सर्ग भिन्न और ध्यान भिन्न क्यों है कि कायोत्सर्ग में आगे लिखा है कि कायोत्सर्ग में 12 भावनाओं के चिंतवन आदि में चित्त लगा हुआ रहता है। इसका अर्थ क्या समझना कि सिर्फ नमोकार मंत्र बोलना मेरा नहीं, सिर्फ नमोकार मंत्र बोलना उसका निषेध नहीं है, लेकिन सिर्फ लगा दिया है तो सिर्फ नमोकार मंत्र ही बोलना कायोत्सर्ग नहीं है, क्योंकि कायोत्सर्ग मुद्रा में 12 भावना आदि का चिंतवन भी होता है। इसलिए धौलाकार कहते हैं कि कायोत्सर्ग का ध्यान में अंतर्भाव नहीं होता है। तो कायोत्सर्ग किस लिए किया जाता है, फिर वो भी इसकी भाषाएं आएंगी और परिभाषाएं तो बहुत ही दी हुई है। नियम कार्य की परिभाषा और पढ़ते हैं ये नियम कार्मिकी काम पंक्ति आई हुई है, जिसका ही अर्थ ये है कि काय आदि परिद्रव्यों में एक एक शब्द दूसरे मतलब ध्यान से सुनेंगे तो अगला अर्थ समझ में आ जाएगा। काय आदि परिद्रव्य, सिर्फ काय नहीं, काय आदि परिद्रव्यों में सिर भाव छोड़कर, कौन सा सिर भाव छोड़ करके जो आत्मा को निर्विकल्प रूप से ध्याता है, काय आदि परिद्रव्यों में सिर भाव छोड़कर जो आत्मा को निर्विकल्प ध्याता है, उसके इस प्रकार के ध्यान को काय कर्म कहते हैं। ये नियम कार्य है और भी परिभाषाएं हैं और भी उसके वर्णन है, लेकिन कायोत्सर्ग भगवती आराधना के अनुसार किस लिए किया जाता है, अनेक प्रयोजन है इसके अलग अलग उसमें। तो कायोत्सर्ग किस लिए किया जाता है, अतिचार निवृत्त कायोत्सर्ग क्या लिखा है, काफी देर लेकिन बैठ जाना चाहिए, बार बार इसे चले नहीं चले, बड़े हो छोटे हो सभी को एक बात तो थोड़ा सा आगे चिंतन के लिए लिख लेना चाहिए। कायोत्सर्ग किस लिए, अतिचार निवृत्त है, अतिचार निवृत्त है कायोत्सर्गा किस लिए किया जाता है, अतिचार की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, अतिचार का मतलब क्या है, कि अतिचार की निवृत्ति के लिए, नवीन भाई कॉपी पेन लेना, अतिचार की निवृत्ति के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है, बराबर है, अतिचार का मतलब क्या, नहीं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, कायोत्सर्ग कभी कभी नहीं होता है, सदा काल भी हो सकता है, चर्चा ही तो बता देता हूँ। जैसे श्रद्धा अपेक्षा सम्यक दृष्टि से काय के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है, बराबर, और काय के प्रति जितने अंत में राग की निवृत्ति हुई और जो एकत्व बुद्धि टूट गई वो चारित्र की अपेक्षा कायोत्सर्ग है, कायोत्सर्ग भी दो प्रकार, चारित्र की अपेक्षा और श्रद्धा की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा काय की अपेक्षा है, और चार भूत और तो श्रद्धा की अपेक्षा से तो सम्यक दृष्टि से सदा का बराबर, और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो उतने चारित्र में भी शरीर के प्रति अप्रत्याशन का अभाव हो गया, उतनी सदा का है ना वो गुणस्थान मिल जाए तो बात है, हाँ अगला प्रत्याशन बात समझ मानी तो ऐसा घटा अतिचार निवृत्त है, चारित्र के चार दोष बताए जाते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार, अतिक्रम किसे कहते हैं नहीं मन में जो भी धर्म क्रिया है व्यवहार से और निश्चय से तो आत्मज्ञान की व्यवहार से जो चारित्र के दोष दिखाए निश्चय रूप से कि मन में ही अरे मैं यहाँ कहाँ आके बैठ गया, मन में चल रही है बात, इसके बजाय घर में होता है कुछ और करते हैं, तो मन से धर्म के प्रति अनादर का भाव उसको अतिक्रम कहते हैं, नवीन अतिक्रम नंबर 1 पर क्या लिखना है अतिक्रम, अतिक्रम मतलब मन में ही, मन में इन जो हम क्रिया कर रहे हैं इसका बहुमान भी हो सकता है, ये कहते हैं ना प्रज्ञा अपराध और प्रज्ञा गुण, प्रज्ञा अपराध भी है, प्रज्ञा अपराध नहीं, प्रज्ञा के प्रति अपराध, प्रज्ञा अपराध का मतलब प्रज्ञा के प्रति जो अपराध है उसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं, ऐसे ही हम कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं बहुमान आने की वजह, बहुत चैतन्य जाए भगवान आत्मा का बहुमान आने की बजाय पर द्रव्यों का बहुमान आता है तो ये बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध है। बहुमान आना तो चरित्र का अंश है, ज्ञान और चरित्र साथ में है कि हम कितना बढ़िया स्वाध्याय कर रहे हैं। लाखों करोड़ों जीव है उनकी संघ प्रमाण मनुष्य है, या अपने इस परिचित क्षेत्र में से भी देखे तो कितने ही लोगों को ये बात तो सुनने को भी नहीं मिल रही है। तो ये तो बहुमान लाना कि कम से कम इतना भाग्यशाली तो मैं हूँ कि धर्म क्षेत्र पर बैठ करके मंदिर आदि स्थानों में बैठ करके मेरे कानों में जिनेन्द्र भगवान की वाणी पड़ रही है। बहुमान आए कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, यदि यहाँ नहीं होता तो यहाँ विचार तो करो कि प्रभु मैं यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता। आज उसे कचारियों में पड़ा रहता, उसे भोगों में पड़ा रहता और वहाँ तो मेरे कैसे परिणाम होते। कल्पना तो करो इसके शरीर के बाद जब परिणाम बाहर जाके देख लो कैसे परिणाम हो जाएंगे। बहुमान का भाव मन में है ना, ये आदर का भाव कि मेरे वास्तव में मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा पड़ोसी कैसा है क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने आप में कैसा हूँ क्या कार्य कर रहा हूँ। इस तरह का जो बहुमान का भाव आता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये कार्य करते हुए अरे मैं क्या पंडिताई में फंस गया, इसकी वजह से ही और जगह होता। हालांकि निश्चय से तो ये देखा जाए तो पंडिताई भी आत्मज्ञान में बांधती है, क्योंकि सुनाने से गला टूट जाता है, अंदर समान से हरा रहता है, हाल तो नहीं है। और ये तो दो चार की बातें हैं, फिर तरह तरह की उत्पन्न करके कथाएं भी हो जाती है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो आदर का भाव है कि आज मैं अपने आप को ये देखूं कि पूज्य गुरुदेव श्री की जो मूल बातें हैं वो जो वास्तव में सबके लिए हितकारी है उसको तो बताना ही चाहिए। तो ऐसा सोच करके मेरे निमित्त से बिना अभिमान और बिना लोभ के, मान भी नहीं करे लोभ भी नहीं रखे, नाम का लोभ भी लोभ है, धनाधिक का लोभ भी लोभ है, किसी भी तरह का अपवित्र भाव मन में न रख करके विशुद्ध भावना से यदि भगवान का श्रवण वाचन कर ले तो कितना अच्छा सत्संग हो जाता है। तो ऐसा बहुमान का भाव रखे। और दूसरा ये कि आने में परेशानी जाने में परेशानी, कहाँ पंडिताई में फंस गए, अनादर अपने अपनी क्रियाओं को जोड़ लेना, इसको कहते अतिक्रम। अनादर के भाव मन में आने वाले अनादर के भाव को क्या कहते हैं, अतिक्रम कहते हैं। और वही अनादर यदि हमारे वाणी से व्यक्त होता है तो उसको दूसरे नंबर का कहेंगे, है ना। मन में अनादर हो गया, अरे अपना बहुमान हम ही करेंगे, हम अपना बहुमान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे हमें अपने आत्मा की महिमा नहीं आए तो आपके आत्मा की महिमा आपके भीतर कौन लाएगा, है। ये तो बेचार संसार के स्वार्थ के बहुमान की बात नहीं करना कि इसके पास इतना पैसा भी है धूल मिट्टी है। हम तो उस गुरु के शिष्य है जो कहते धूल मिट्टी है वाकई है, कहते हैं कि नहीं वाकई है ये धूल मिट्टी, जैसे इतना करोड़पति अरबपति है धूल मिट्टी है, उसकी महिमा में तो अपनी बुद्धि में होना चाहिए ना दूसरे की बुद्धि में रखना है। ये धूल मिट्टी है मकान दुकान घोड़ा गाड़ी बंगले आदि, इसका बहुमान नहीं। हमें तो चैतन्य ज्ञान, चैतन्य को प्राप्त कराने वाला ज्ञान मिल रहा है, ये बहुत भाग्यशाली हम है। हमें अपनी महिमा नहीं आए तो कोई दूसरा जाकर के आपके भीतर महिमा नहीं बिठाएगा, समझ में आ रही बात। खुद को ही महिमा आनी चाहिए कि अपना अनंत गुणों का भंडार, अनंत शक्तियों का गोदाम, मैं स्वयं चैतन्य जाए भगवान आत्मा हूँ, आपको अपनी महिमा नहीं आए तो जिनवाणी या कोई गुरु आपके भीतर नहीं डालेगा। अपनी महिमा आना ये तो गुण है, और मन में महिमा न आना क्या है, अतिक्रम नाम का दोष है। नंबर दो व्यतिक्रम, कि जो कसाय और अधिक हो जाती है तो वचनों से बाहर आ जाए, वचनों से बाहर आ जाती है। अरे फालतू में इसमें चले गए, ये जो परिवार है परिवार में भी लोग कहेंगे कि कहाँ इस पंडिताइन में फंस गए, या कौन सा धर्म कर रहे हो, दुकान संभालो, ये करो वो करो, जो भी बातें हैं। कारण ये है कि अपने वचनों से भी खुद से कोई और कहता उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद ही वचनों से यदि उसको हे बताओ, आप साध्याय में बैठ नहीं सकते, ये अलग बात है, लेकिन साध्याय को आप गलत कहो ये दोष है, वो श्रद्धा का दोष है, और बैठ नहीं सकते चारित्र का दोष है। नहीं बात नहीं, आपके कोई और परिस्थितियां हैं, कुछ है, ये तो चारित्र का दोष हो गया, लेकिन बैठना गलत है ये कौन सा दोष हो जाएगा? श्रद्धा का दोष है, तो ही बताया आपने, अतिक्रम हो गया, वचनों से बोला गया तो व्यतिक्रम हो गया, और उस क्रिया का त्याग करना ये अतिक्रम हो गया। स्वाध्याय के प्रति, दर्शन के प्रति, या व्यवहार चारित्र के प्रति, आवश्यक क्रियाओं के प्रति मन में अनादर का भाव होना अतिक्रम, वचनों से उसको व्यक्त करना व्यतिक्रम, और उस क्रिया का त्याग करना, कुछ काल के लिए त्याग किया अतिचार है। इन तीन दोषों का, तीनों दोषों, तीनों ही दोष है, तीन दोष तक नहीं भाई प्रायश्चित है, तीन दोषों तक प्रायश्चित है, लेकिन चौथे दोष है अनाचार। तो अनाचार कहते हैं लगातार उसको छोड़ ही देना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तीन दोषों तक प्रायश्चित है, चौथे दोष का कोई प्रायश्चित नहीं है। बात समझ में आ गई? ये तो चार हो गए, चार में से आप कौन सा लिया है? अतिचार। अतिचार निवृत्त है, इसका विचार करना है। अतिचार निवृत्त है, ये बताए ना भगवत कि अतिचार निवृत्त है, कालो श्रद्धा बहु प्रकार, बहुत प्रकारों का भी विचार करें कि बहु प्रकार भवंती कायो श्रद्धा, इसलिए अतिचार निवृत्त है। तो अतिचार का यहाँ जो अर्थ है वो तो दोषों की निवृत्ति के, बराबर, किसके लिए? दोषों की निवृत्ति के लिए। अतिचार निवृत्त है का मतलब दोषों की निवृत्ति के लिए, बराबर, समझ में आ रही बात? दूसरी बात, अतिचार की निवृत्ति के लिए, लेकिन अतिचार किसे कहते हैं? अब नंबर एक, दुनिया में अविनय या शास्त्रों में अविनय को सबसे बड़ा अतिचार बताया, अविनय को सबसे बड़ा अतिचार बताया है। कि सबसे बड़ा अतिचार कौन सा? अविनय। कौन सी? अविनय। अविनय सबसे बड़ा अतिचार है, दोष है। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी अविनय कौन सी? प्रश्नों में प्रश्न होंगे किरण भाई, अविनय सबसे बड़ा अतिचार दुनिया में, सबसे बड़ा या जिनागम में भी सबसे बड़ा अतिचार जो बताया वो अविनय को बताया, लेकिन अविनय में सबसे बड़ी अविनय कौन सी? शास्त्र की, अपने स्वामी जी की भाषा में, जैसे भाई बता रहे हैं कि अपने स्वभाव की अविनय सबसे बड़ी अविनय, ये यही एकमात्र अविनय समझना, जिसको मैं व्यवहार से तो बहुत सारी बता देना, देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, जैसे यहाँ जिनवाने पर माइक रख देना है ना, इससे कोई उपकार नहीं है, मतलब लिख नहीं सकते इतनी ही है, नहीं है बात नहीं है, और तो क्यों, और क्या, कि आप सुनने के लिए आए, यहाँ करके बात शुरू कर दी थी है, और मंदिर में बैठे बहुत सारे चौरासी आकाशना दोष वगैरह, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो यथा योग घटा लेना, लेकिन विनय में, अविनय में सबसे बड़ी अविनय कौन थी? कि जीव चेतन होते हुए चेतन की अभिनय कर रहा है, अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहा है, है? कि अनंत शक्तियों का पिंड है, चैतन्य रूपी है, लेकिन अपने आप को जड़ रूप अनुभव कर रहा है। ये किसकी अभिनय हुई है? स्वयं की, किसी पड़ोसी की नहीं है। विनय करेंगे तो जो रत्नत्र धर्म प्रकट होगा वो पड़ोसी का नहीं होगा, है? स्वयं चैतन्य पिंड होते हुए इस जड़ शरीर में, स्वामी जी भाषा में कहे कि मृतक चले वाले मूर्छाए गए थे, इसे मृतक कलेवर जड़ है, इस जड़ में यह जीव अपने आप एकत्र बुद्धि करते हुए अपने चैतन्य स्वरूप की अनंतानंत गुणों का धारी होते हुए जड़ रूप अनुभव करता है। 24 घंटे जड़ की सेवा करता है, जड़ की गंदगी इसको गंदगी लगती है, अपने भीतर राग द्वेष कषाय है वो गंदगी इसको गंदगी ही नहीं लगती है। अरे प्रभु समय तो बहुत जल्दी निकल के जा रहा है, 20 मिनट रह गए विषय बोल। तो ये जो अभिनय है, अभिनय में सबसे बड़ी अभिनय अपने स्वरूप की है, स्वरूप की विराधना की है। एक तो कायिक शरीर का प्रयोजन ये है, दूसरा कायिक शरीर का प्रयोजन है भगवती आराधना में दुख के क्षय के निमित्त कायोत्सर्ग किया जाता है, दुख के क्षय के निमित्त कायोत्सर्ग किया जाता है। ये कायोत्सर्ग का दूसरा प्रयोजन है, विस्तार के लिए या और विचार करने के लिए समय नहीं है। तीसरा है स्वरूप की लीनता, स्वरूप की लीनता के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। चौथा है स्वरूप की लीनता के साथ साथ आत्म ध्यान, आत्म ध्यान के लिए जैसे नियम सार की जो पंक्ति पड़ी थी, आत्म ध्यान के लिए वास्तव में मुख्य प्रयोजन तो ये भी है, क्योंकि इसी से अतिचार आदि दोष दूर हो जाते हैं, दुख क्षय का अभाव होता है। चौथा जो प्रयोजन है शांति सुख आनंद की प्राप्ति, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जो जल्दी पूरे करने हैं, काल कितना होता कि जगन्य से अंतर मुहूर्त है उत्कृष्ट काल एक वर्ष है, कायोत्सर्ग का काल कितना, जगन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल एक वर्ष है, जगन्य से अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट से एक वर्ष का इसका समय है। कब कब करना चाहिए तो उसके लिए अनेक बहुत प्रकार है, जो बताए तुम बहुत प्रकार का, अनेक प्रकार के कार्योत्सर्ग किया जाता है। जैसे अतिचार की निवृत्ति के लिए, उत्तम समाधि जिन गुणों की भावना बनाने के लिए, वैराग्य भावना वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए, ये धौला ने बताया, काल संबंधी क्रियाओं की निवृत्ति के लिए, हिंसा आदि पाप पापों में लगे हुए दोषों की निवृत्ति के लिए, ऐसे अनेक प्रयोजन इसमें बताए हैं। दूसरे जिलों के काल भेद है, उसके बाद और विशेष चर्चा करेंगे यदि समय रहा तो। जो मुझे कहना था ये है कि इसके काल भेद मुख्य रूप से किए जाते हैं। हाँ जी, महावीर भगवान की बाहुबली भगवान की तरह उनका उत्थित उत्थित करना भी है। नहीं होता, निश्चय से नहीं होता, व्यवहार को कषाय की मंदता के लिए। अब इतना ऐसा समझाने के लिए बता सकते हैं कि जितने अंश में उसके कषाय की मंदता हुई, शरीर के प्रति जो तीव्र ममत्व था वो मंद हो गया, तो तीव्र मन से जितना मंद हो गया, जितना मंद हो गया उतना, लेकिन निश्चय से जो कायोत्सर्ग मोक्ष का कारण है, कारण मुख्य का कारण बताओ, वो उससे नहीं होता, उस अपेक्षा से नहीं, मतलब उस अपेक्षा से है ही नहीं, है ना। अब एक बात जो चार भेद बताने उसका प्रयोजन भी मुझे बताना है, 15 मिनट का समय है अपने पास। चार भेदों में पहला भेद है उत्थित उत्थित, उत्थित उत्थित, उत्थित मतलब खड़ा हुआ, और उत्थित शब्द दो बार निकले ना,
उत्थित उत्थित संधि करके लिखते हैं संस्कृत में उत्थितोत्थित हो जाता है। उत्थित उत्थित मतलब सरल भाषा में अपन को भाषा का आग्रह नहीं है। उत्थित उत्थित बराबर शरीर से खड़ा है और परिणामों से भी खड़ा है तो उसको उत्थित उत्थित है। शरीर से खड़ा है और परिणामों से भी खड़ा है तो उसको उत्थित उत्थित कहते हैं। अब परिणामों से खड़ा रहने का मतलब क्या मेरी बात नहीं। परिणामों से खड़े का मतलब क्या है कि जो शरीर से खड़ा है और परिणामों में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है तो उत्थित उत्थित वाला है। मेरी बात नहीं कि जो शरीर से खड़ा हुआ है अर्थात शरीर के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। द्रव्य से भी खड़ा है और भाव से भी खड़ा है। द्रव्य से भी खड़ा है और भाव से भी खड़ा है उसको क्या कहेंगे उत्थित उत्थित। अब द्रव्य से तो खड़ा है शरीर से तो खड़ा रहता है और भाव से रहता हुआ है उत्थित निवृत्त। उत्थित निवृत्त दूसरा उत्थित उत्थित तो समझना है। द्रव्य से भी शरीर से भी खड़ा समझे हैं खड़ा हुआ है और भाव से धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान का धारी है तो कौन सा भेद हो गया वो उत्थित उत्थित हो गया। समझ में आ गया उत्थित उत्थित सरल है और मैं दो चार बार और रिपीट कर दूंगा यदि समझ में नहीं आती। उत्थित उत्थित हो गया द्रव्य से अर्थात शरीर से खड़ा है और परिणामों से भी खड़ा हुआ है और द्रव्य से वो खड़ा है उत्थित है लेकिन भाव से रौद्र धर्म आत्म ज्ञान वाला शरीर से तो खड़ा है शरीर से खड़ा हुआ है नहीं बस लेकिन परिणाम उसके आत्म ज्ञान और रौद्र ज्ञान से है तो शरीर से तो खड़ा दिखेगा है ना तो वो लेकिन परिणाम उसके आत्म ज्ञान और रौद्र ज्ञान से है तो उत्थित निरुक्त संस्कृत शब्द बैठा हुआ लिख लीजिए बैठा हुआ दिमाग में रख लीजिए। अभी तो नहीं हो पाएगा अभी तो बहुत सारा है। हाँ गुण स्थानों में भी घटा सकते हैं पांच भावों में भी घटा सकते हैं नए आदि में भी घटा सकते हैं लेकिन अपने पास मुख्य प्रयोजन भी है। सबसे बड़ी प्रयोजन तो ये है देखो कायिक कर्म का जो प्रयोजन है कि ये दोष की निवृत्ति के लिए जैसा पूजन आदि की उदाहरण के लिए यह हमने साधा आदि किया है मानो जब पीछे क्यों बैठ गए माइक शुरू करके यही बैठा नहीं क्या कहा रस आया उनको भी ध्यान से सुन रहे देखो साधने किया पूजन करें। अब मोटे तौर पर कहते हैं कि वहाँ कोई दोष लग गया हो तो उस दोष की निवृत्ति के लिए कायिक कर्म करते हैं ये तो व्यवहार प्रयोजन। निश्चय से यह है कि हे प्रभु मैंने आपके गुणों का चिंतन किया लेकिन वैसे ही गुण मेरे भीतर है उसका अनुभव नहीं किया ये मेरा अपराध हुआ है उसके लिए कायिक कर्म करके उस दोष को दूर करता हूँ। ये आपके गुणों का चिंतन किया वंदे सद्गुण लब्ध है भक्ति किसके लिए की जाती है कि प्रभु में जैसा द्रव्य है वैसे द्रव्य मुझ में है जैसे उनके गुण है वैसे ही मेरे भीतर गुण है परंतु जो अंतर रह गया उनके पर्याय द्रव्य गुण तीनों को जानकर द्रव्य तो गुणत्व तो पर्याय तो ऐसे शब्द प्रवचन था कि उसके उन आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए अब गुण कौन से रह गए द्रव्य समान है गुण भी समान है तो पर्याय जो निर्मलता आदि है आपके समान ही आपने जैसे आत्म ध्यान के द्वारा गुणों की प्राप्ति की वैसे ही आप मुझे याद दिलाने वाले हैं कि आत्म ध्यान करो तो पर्याय निर्मलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है उन गुणों की प्राप्ति पूजा करने पर भी न हो पाई है इसलिए व्यवहार से भी और निश्चय से भी एक श्लाघ तक स्वाध्याय किया परंतु अंतरंग में मुझे अपने स्वरूप की याद नहीं आई, मुझे आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, आत्मविचार प्रकट नहीं हुआ है, तो मैं अपने स्वरूप में जाता हूँ नहीं लगाता हूँ। इसमें भगवान की विनय भी है और स्वरूप की साधना भी है। पूजन के काल में जिनेन्द्र भगवान की विनय भी है और उसके बाद आत्मज्ञान की प्रेरणा भी है, इसके लिए कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का मूल प्रयोजन तो यही है। तो ये जो पहले दो भेद है उससे ये समझ में आ रहा है कि खड़गासन ये परिणामों को ये निश्चित नहीं करता कि इसके परिणाम अंतरंग में निर्मल ही हो है? आप दंड हो गए खड़गासन में खड़े हो गए तो खड़गासन में खड़े हो गए तो कोई जरूरी नहीं कि आत्मज्ञान ही कर रहे हो। आत्मज्ञान हो सकता है, धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान हो सकता है, कायोत्सर्ग धर्म ज्ञान हो तो परंपरा से मोक्ष का कारण है और अंतरंग में शुक्ल ज्ञान हो तो निश्चय साक्षात मोक्ष का कारण है। आर्थ ज्ञान और लौकिक ज्ञान हो तो संसार का ही कारण रहता है। इसलिए पहला तो ये उचित ही पूज्य है। आगे उपविष्ट उचित तीसरा हो उपविष्ट उचित मेरे ख्याल से कल्पना आ गई कि बैठा हुआ है पद्मासन आदि पद्मासन आदि मुद्राओं में बैठा हुआ है, शरीर द्रव्य से तो बैठा हुआ है और परिणामों से धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान वाला है, सरल भाषा में कहे निर्मल ईशराजी शुद्ध परिणाम वाला है और दूसरी आध्यात्मिक भाषा में कहे आत्मज्ञान करता हुआ है, तो वैसे द्रव्य से उपयुक्त है परिणामों से उपयुक्त है द्रव्य से। हाँ वो भी पूज्य है बराबर उचित उचित जितना पूज्य है उपयुक्त उचित ही उतना ही पूज्य है। केवल आत्मज्ञान केवल आसन का ही अंतर है कि वो इसको दो प्रकार के जो मनुराग कर्मी राजे का स्वरूप है और बहुत सारी बातें हैं लेकिन कितना हो पाएगा कोई पता नहीं। जैसे सुदर्शन मुनि जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो जो कहानी की किताब थी ना रही रहेगी उसमें सिर्फ सुदर्शन दो तीन की है और किसी इसके संबंध में एक वाक्य इतना सा है कि किसी को चाहिए होते दिन जाने छपाई वो स्वाद्याय के लिए फ्री देते हैं कि उसमें से एड्रेस ले लेना है फोन नंबर ले लेना और मंगवा लेना, मंडल के लिए भी मिल जाएंगी और चीजों के लिए भी मिल जाएगी, ज्यादा प्रक्रिया नहीं मिल जाएगी, जितनी कहो उतनी मिल जाएंगी 100 50 200। उसमें उसमें है किताब में जिसके पास होगी उसमें से दीपक डॉक्टर दीपक जैन से ले लेना। फिर यहाँ उनके लिए कहा कि जैसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन स्मशान में जाकर के वस्त्रादि का त्याग करके और ऐसे आर्द्रता के लिए जुनवाने ने कहा कि और श्रावक के लिए भी कहा कि यदि वो देश आदि की मर्यादा लेता है क्षेत्र की मर्यादा लेता है तो उस क्षेत्र के अलावा बाहर के क्षेत्र के लिए वह महावती के समान है। सुनाइए सामग्री सभी के लिए जितनी मर्यादा हमने ली है धर्म जीवन जितनी क्षेत्र की मर्यादा ली है उसके बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा उसको महावती बताया है। सुदर्शन आदि जी के अंतरंग में जो भावों की वैसी स्थिरता नहीं होने से बाहर में वस्त्रादि का त्याग नहीं है लेकिन उस काल के लिए परिमित काल विषय परिमित काल विषय की अपेक्षा जैसे पंचम गुणस्थान वर्ती होने पर भी उतने काल के लिए वो मुनि समान है। मुनि नहीं है बात समझ आ रही है। ऐसे ही जितने काल के लिए यह जीव अपने स्वरूप में कायोत्सर्ग मुद्रा में लीन रहता है बाहर के गृहस्थ आदि हो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हो तो पंचम आदि गुणस्थान वर्ती उतने समय के लिए मेरे बात क्योंकि गुणस्थान परिणामों की विशेष को कहते हैं। मोक्ष बाकी कई चार गुणस्थान को भी आगे भी उन्हें काम कहते हैं। तो दो भेद हो गए उनसे, एक तो उत्थित उत्थित और निवृत्त उत्थित, तीसरा भेद चौथा एक तो उत्थित और निवृत्त हो गए ना। उत्थित निवृत्त मतलब द्रव्य से तो खड़ा है लेकिन परिणामों से आत्म और रौद्र ज्ञान वाला है, और निवृत्त निवृत्त उपयुक्त और निवृत्त चौथा है। उपयुक्त निवृत्त क्या हो गया कि द्रव्य से भी बैठा है और भाव से भी बैठा है। ऐसे कायोत्सर्ग दो प्रकार के हो रहे मानस और कायिक, इनकी चर्चा नहीं है इतनी संभव। एक विषय अभी नाम सुना होगा, उससे पूर्व भाव में वो आनंद भरा और उसका कोई देव अपहरण करके ले गया, और अपहरण करके ले जाने के बाद 22,000 पुत्र स्वयं चक्रवर्ती और सारी सेना मिलकर के उसको खोजती रही, लेकिन बाप का विजय इतना तीव्र दिखाई नहीं। फिर शरीर की स्थिति और सारी चीजें देख करके उसने व्रत ले लिया, संलग्ना ले ली, फिर अजगर ने उसको जकड़ लिया। पता है उस काल में उसने कायोत्सर्ग धारण किया था, वहां भी मुद्रा में समझ आ गई बात। ये तो सामान्य मुद्राएं हैं, पद्मासन की और खड्गासन की ये तो क्या है सामान्य मुद्राएं हैं। मान लीजिए कोई बहुत वृद्ध हो गया, अब लेट गया, बैठने की स्थिति नहीं, खड़े होने की स्थिति नहीं है, क्या कार्यक्रम नहीं कर पाए ये आत्मज्ञान उस काल में उसके हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस काल में भी उसके आत्मज्ञान हो सकता है, मतलब केवल दो मुद्रा की बात नहीं है। अब ऐसी चर्चा तो दो की आ रही है, लेकिन कायोत्सर्ग का मूल प्रयोजन क्या है, ये अतिचार अर्थात गुण। तुम वैसे अब तक गुण हुए या दोष हुए बताओ सुबह से अब तक क्या करते रहे, जो कषाय चलती रही बराबर है, तो कषाय गुण है कि दोष है, ये दोष ही है, तो क्या अब भी कषाय में रहना है, ये नहीं रहना है। तो कषाय से जो निवृत्ति है जिस आसन में ली संकल्प पूर्वक ली, तो उसको क्या कहेंगे कि कषाय और ममत्व दोनों की निवृत्ति, उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। और इसके कई भेद बताए, कई प्रकार से इसकी चर्चा है, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि जब कायोत्सर्ग करते हैं तो जैसे मुनिराज उपसर्ग और परिसर को सहन करते हैं, लिखा है कि जैसे मुनिराज उपसर्ग और परिसरों को सहन करते हैं, वैसे कालोत्सर्ग सही मायने में वही है। इसमें दर्शन का कि चाहे जितनी युग्न की क्रियाएं उपस्थित तो हो, चाहे जितनी युग्न की क्रियाएं उपस्थित तो हो, उपयोग यदि शरीर से हटा लिया है तो स्वरूप में ही स्थिर करे, स्वरूप में ही स्थिर रखे, बाहर में चाहे जैसी स्थिति हो उस स्थिति में। अब इसके लिए अनेक विस्तार से समझाया हुआ है जनागम ने कि जैसे यह भी मान लीजिए डाकुओं ने पकड़ लिया, चोरों ने पकड़ लिया, तो आपके हाथ और पैर बांध दिए और उस समय आपकी पिटाई कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं भैया, सहन तो करते हैं वहां पर, चाहे शरीर की बात नहीं है तो उदाहरण मात्र है, वहां क्या करते हैं बहु भाई पराधीन हो गए। कल रात में बताया तो कि नर्कों में पराधीन होकर के कष्ट सहता है, इस लोक में भी मान लीजिए किसी ने पकड़ लिया आपके हाथ पैर बांध दिए तो क्या करोगे, तो जैसे पराधीन होकर के यह जीव कष्ट सहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है, वैसे स्वाधीन होकर आत्म भावना से शरीर से ममत्व की निवृत्ति साधने कषाय की निवृत्ति इसको काय कर्म कहते हैं। शारीरिक भावना से सब खड़े हो गए इसलिए मुझे खड़ा होना है कि भैया अभी तेरे विचारों में सिद्धि नहीं है। अरे कषायों से धर्म करता है सर्वोत्तम ज्ञान के लिए शास्त्र करता है तो अभी तेरे विचारों में लक्ष्य में सिद्धि नहीं है। सभी क्रियाएं आत्मा के प्रयोजन से होती है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए होती है, अपने स्वरूप में लीन रहने के लिए होती है, स्वरूप के आनंद के भोग के लिए होती है, स्वरूप के शांति के भोग के लिए होती है, स्वरूप के सुख के प्राप्ति के लिए और उसकी निरंतरता चिंता के लिए होती है। इसलिए हमें कार्यक्रम आदि सभी क्रियाएं उसी प्रयोजन से करनी चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य सही नहीं है तो हमारा ज्ञान भी सही नहीं होता है और हमारे विचार भी सही नहीं रहते हैं। सभी के विचारों में चैतन्य जाए भगवान आत्मा ही सदाकाल विराजमान रहे और सभी कार्यक्रम आदि क्रियाओं के द्वारा सिद्ध चैतन्य तत्व को प्राप्त करके सारी अनंत काल के लिए सिद्ध बने। इसी भावना से आज का अपना समय पूरा हो गया। ऐसे शब्द हाँ जी दोनों होते हैं। हाँ बस आजीवन भी होता है संलेखना के दो कार्य कर गए काय तथा काय काय श्रद्धा और चारित्र अभी तो विस्तार खोला नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा से भी कार्य कर जो बताया समय दृष्टि के सदाकाल होता है और चारित्र की अपेक्षा से जैसे जो क्रियाओं के दोषों की निवृत्ति के लिए तो ऐसे ही यम नियम भी है पहचान और मानस और काय ऐसे भी है और चार चीजों की ही चर्चा आज होकर कौन सा उपरिष्ट बता दीजिए कौन सा उपरिष्ट उच्चित बहुत सरल है। उपरिष्ट मतलब बैठा हुआ है और उच्चित द्रव्य से तो बैठा हुआ है और भावों से धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान बराबर नहीं होता नहीं होता है। हाँ मूल तो प्रयोग है। हाँ 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 बराबर बराबर बिल्कुल बिल्कुल ये मैं आगे नोट करूंगा।